आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के आठवें अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 16 से। आ ब्रह्म भुवना लोका,
आ ब्रह्म भुवना लोका,
पुनरावर्तिनो अर्जुन,
पुनरावर्तिनो अर्जुन,
मामुपेत्य तु कौन्तेय,
मामुपेत्य तु कौन्तेय,
पुनर्जन्म न विद्यते,
पुनर्जन्म न विद्यते।
अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों में लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद्गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। कृपया मेरे पीछे आप इस शोक का अनुवाद दोहराएं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक, जो इस भौतिक जगत का सबसे उच्चतर लोक है, से लेकर के निम्नतर लोक तक सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। लेकिन जो मेरे धाम को आते हैं, जिसे गोलोक धाम कहते हैं, जो इस भौतिक जगत से परे की सृष्टि है, जो व्यक्ति वहां पहुंचता है उसे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हम सभी का ये अनुभव है, इस भौतिक जगत में सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कष्टों से हमेशा पीड़ित रहते हैं। इससे ही जस्ट एक श्लोक पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के सृष्टि करता है, नियंत्रण करता है, वो स्वयं कह रहे हैं ये जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है, दुखालयम। तो आलय मतलब घर, जैसे हम वस्त्रालय जाते हैं तो वस्त्रालय में हमको क्या प्राप्त होता है, कपड़ा, वस्त्र प्राप्त होता है। औषधालय में हमको क्या मिलता है, औषधियां मिलती है। तो भगवान इस भौतिक जगत को क्या कह रहे हैं, दुखालयम, अर्थात इस भौतिक जगत में क्या मिलता है सबको, दुख मिलते हैं। और दूसरा शब्द कह रहे हैं अशाश्वतम, अर्थात ये विनाशवान है, ये सनातन नहीं है, ये खत्म होने वाला है। इस भौतिक जगत की हर चीज नश्वर, हमारा देह भी नश्वर है और इस देह से संबंधित सब चीजें नश्वर, लेकिन इस देह के अंदर विराजमान जो हम हैं, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो यहां सभी हैं, वो नश्वर नहीं है। तो क्या हम शरीर हैं या शरीर से अन्य कुछ और हैं? तो हम शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रारंभ में ही ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं कि देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कि दो चीजें हैं, एक देह है और एक देही है, एक शरीर है और एक शरीर के अंदर निवास करने वाला आत्मा है। दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। ये शरीर हमेशा नाशवान होता है, लेकिन इसके अंदर विराजमान जो आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता। तो अभी हम इस वर्तमान भौतिक जगत में हैं, हालांकि हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी हो गई है, इस शरीर के अंदर आने के कारण, इस भौतिक जगत में उपस्थित होने के कारण आपको, हमको, सबको मृत्यु प्राप्त होगी, और फिर दोबारा से एक और शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जीवन ही सब कुछ है। जब हमारा जन्म होता है तब से हमारा जीवन प्रारंभ नहीं होता है, और जब हमारा मृत्यु होती है तब हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं जैसे इसी जीवन में हम अनेक अनेक शरीर बदलते रहते हैं, हमारा पहले जब जन्म होता है तो छोटा शरीर होता है, बच्चे का शरीर होता है, जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो युवावस्था प्राप्त करते हैं तो युवा शरीर होता है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं फिर बुढ़ापे का शरीर मिलता है। तो ये शरीर तो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इन शरीरों के अंदर हम अनुभूति करते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं जो इस पूरे जीवन में अलग अलग शरीरों का परिवर्तन देखते रहते हैं। हम सबको अनुभूति है कि हाँ, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम वही व्यक्ति हैं। हमारे सगे संबंधी भी हमसे उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं बातों का कि हम वही व्यक्ति हैं। तो हालांकि हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे ये शरीर तो बहुत बार बदला है। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो शरीर बदलता है, लेकिन हम नहीं मरते। जब अभी तक नहीं मरे तो अभी क्यों मरेंगे? इतने शरीर परिवर्तित करने पर जब हम नहीं मरे तो अंतिम शरीर मरण होने पर हम कैसे मरेंगे? अर्थात हम शाश्वत हैं। भगवान भी एक अन्य श्लोक में इस बात को व्यक्त करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सनातन हैं, हम कभी मरने वाले नहीं। लेकिन फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करिष्यति। हालांकि हम हैं तो सनातन, हालांकि हमारा वास्तविक अस्तित्व तो सच्चिदानंदमय है, अर्थात हम नित्य हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं और आनंद से ओतप्रोत हैं, लेकिन हमारी जो ये वर्तमान स्थिति है प्रकृति स्थानी अर्थात भौतिक जगत में जो हम अभी इस समय स्थित हैं वो कैसी है? संघर्ष की स्थिति है। इस भौतिक जगत में आने के कारण हम सभी को क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है, कष्टों से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वर्तमान की जो हमारी स्थिति है वो हमारे लिए अस्वाभाविक स्थिति है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो हमारा स्वाभाविक स्थान नहीं है। जैसे यदि हम हवाई जहाज में हों या पानी के जहाज में हों तो हमेशा हमारे को अंदर एक डर लगा रहेगा कि कहीं एरोप्लेन क्रैश तो नहीं हो जाए, कहीं तूफान ना आ जाए और ये जहाज हम पानी में डूब तो नहीं जाए। लेकिन अभी हम वर्तमान में धरातल पर हैं, भूमि पर हैं, तो हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता है। लेकिन अगर हम पानी में हो या हवाई जहाज में हो तो हमको डर लगेगा। लेकिन जो मछली है वो पानी में रहती है, क्या उसे कभी ऐसा डर लगता है कि तूफान आने का डर लगता है? या जो पक्षी है जो हवा में उड़ रहा है, क्या कभी उसे डर लगता है कि वो न कहीं क्रैश ना हो जाओ? कभी उसको डर नहीं लगता है। तो क्या अंतर है उसमें और हमें? हमें क्यों डर लगता है हवा में और पक्षी को क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि पक्षी का वो स्वाभाविक स्थान है, मछली का स्वाभाविक स्थान है जल, इसलिए उसको जल में डर नहीं लगता है, लेकिन हमें डर लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में जो ये भौतिक जगत में हमारी स्थिति है ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये तो उसकी अस्वाभाविक स्थिति है, फौरन कंडीशन है, अस्वाभाविक स्थिति है। इस शरीर में रहना, इस भौतिक जगत में उपस्थित होना ये आत्मा के लिए अस्वाभाविक स्थिति है, इसलिए हमें इस स्थिति में हमेशा चिंताएं रहती हैं, कष्ट रहते हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन भगवत गीता में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि इस भौतिक जगत से परे एक अन्य स्थिति है, एक अन्य प्रकृति है। परस्तस्मात् भाव अन्यत् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो भौतिक जगत जो हमेशा व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है, यानी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जो बार बार जन्म लेता है, बार बार नाशवान होता है, इस प्रकृति के परे एक अन्य प्रकृति है, एक अन्य जगत है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो सनातन है। वास्तव में हम सभी वहां के निवासी हैं, हम सभी वहां के हैं, लेकिन यहां पर तो हम आ गए हैं, विवशता से यहां पर आ गए हैं, और एक बार यहां आने के बाद अभी जन्म जन्मांतर अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के कष्टों को भुगत रहे हैं। इन कष्टों में चार प्रमुख हैं। क्या है वो चार प्रमुख कष्ट? उसका भी उल्लेख भगवान करते हैं भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये है महान कष्ट। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखिए, इस भौतिक जगत में हम सभी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को हमेशा के लिए रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि इसके अतिरिक्त तो और अनेक अनेक प्रकार के कष्टों को झेलने के लिए ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जितने भी जीव हैं उनकी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आहार, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ सोने के लिए, कुछ रहने के लिए मकान चाहिए, एक घर परिवार चाहिए, ये कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं। तो वर्तमान समय में हम देखें तो हमारा पूरा समाज इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान की प्रकृति के द्वारा हम सभी को ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं ये उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे आप देखिए जानवर होते हैं, उनकी भी ये आवश्यकताएं हैं ना, उनको भी खाने को चाहिए, उनको भी रहने को चाहिए, उनका भी परिवार होता है। तो सभी जानवरों की आवश्यकताएं कौन पूरी करता है? हाथी जैसा विशालकाय जानवर, उसको तो खाने को बहुत अधिक चाहिए, और बहुत सारे अफ्रीका के जंगलों में तो हजारों हजारों हाथी हैं, उनका तो कोई व्यवसाय भी नहीं है, उनके तो कोई शिक्षा प्रणाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो कोई हाथी भूखे मरते हैं? क्या ये पक्षी कभी भूखे मरते देखे? तो कौन उनको खाना देता है? तो भगवान ने अपनी सृष्टि में सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए समुचित प्रबंध किया है, जिससे सभी को उनकी आधारभूत आवश्यकताएं मिलती हैं। सूर्य, ये धरती, ये वायु, इसके माध्यम से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन ये भौतिक जगत की सृष्टि ऐसे है कि यहां पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करने के मार्ग में सभी जीवों को कुछ ना कुछ कष्ट और कुछ ना कुछ सुख आते हैं। भगवान बोलते हैं एक और श्लोक में, मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगम पायनो तामनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। इस भौतिक जगत में जो आने वाले सुख दुख हैं वो कैसे हैं? सर्दी और गर्मी ऋतु के आने जाने के समान हैं। जैसे वर्तमान में अभी ग्रीष्म ऋतु है, अभी दोपहर के समय हम यहां तो इसी बैठे हैं, लेकिन बाहर निकले तो बहुत गर्मी है, तो कुछ कष्ट है शरीर। यही समय यदि सर्दी में होता तो हम सब एसी बंद करके बाहर बैठना चाहते, धूप में बड़ा आनंद आता धूप में। तो ये इस भौतिक जगत का नियम है कि यहां पर सभी जीवों को, चाहे वे भौतिक दृष्टि से कितने भी उन्नत क्यों ना हो, चाहे कोई बहुत अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे उनका शरीर बहुत हष्टपुष्ट है, चाहे वो किसी प्रकार से पीड़ित हैं, चाहे वो किसी बहुत ऊंचे पद पर हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन सभी को जीवन में कुछ सुख आते हैं और कुछ दुख आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई सुख ना हो। क्या आप में से कोई सोच सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है? कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई सुख ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख और कुछ दुख आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो सुख और दुख का आना है ये कर्म के सिद्धांत के अनुसार आता है। हम सभी सुखों के लिए प्रयास करते हैं कि हमें कष्ट ना आए, केवल सुख सुख आए, और कष्टों के लिए तो हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, कहीं मंदिर में जाकर के प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमें कष्ट आए, लेकिन फिर भी कष्ट आते हैं। तो मात्र हमारे प्रयास करने से सुख नहीं आते, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे प्रयास किए बिना दुख आते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ कष्ट और कुछ सुख मिलते हैं। जैसे आप यहां पर उपस्थित हैं तो अभी आप में से अनेक हैं जन्म से उन्हें एक कष्ट प्राप्त है, देखने का कष्ट। तो सामान्यतः हमारे हृदय में ऐसी एक इस कष्ट को लेकर के उदासीनता आ सकती है कि देखिए हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ है कि हमें इस प्रकार का जीवन मिला है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नेत्र हैं लेकिन वह आत्महत्या तो करते हैं, अर्थात उनके जीवन में कितने महान दुख हैं, हालांकि उनके नेत्र हैं लेकिन फिर भी वो बहुत अधिक दुखी हैं। जो व्यक्ति गरीब होता है वो सोचता है कि मैं गरीब हूं इसके बड़ा दुखी हूं, लेकिन कितने अमीर लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं। तो समझने की बात यह है कि जिसके पास जो दुख है वो दूसरे को देख करके सोचता है कि अगर मेरे पास वो होता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन वास्तव में सत्य ये है, इस भौतिक जगत में किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख है, किसी को कोई सुख है तो किसी को कोई सुख है। ये हमें हमारे भाग्य के अनुसार मिलेगा। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं, इस शरीर के लालन पालन के लिए हमें कुछ प्रयास करना आवश्यक है, और उस प्रयास के मार्ग में भाग्य के अनुसार कुछ सुख मिलेगा, कुछ दुख मिलेगा। भगवान कहते हैं इन सुखों दुखों को सहन करना सीखो। ताम तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करना सीखो। अभी जब गर्मी का मौसम है तो नहीं है कि जो गृहिणी है वो रसोई में जाकर के अभी खाना पकाना बंद कर दे कि अभी तो बहुत गर्मी है, अभी कैसे खाना पकाएंगे, आज छुट्टी ले लेते हैं, आज खाना नहीं बनाते। ऐसा नहीं होता। गृहिणी को पता है कि चाहे गर्मी है, थोड़ी देर के लिए गर्मी है, ठीक है थोड़ा सहन करेंगे, लेकिन खाना बनाना जरूरी है। तो जो हमारा कर्तव्य है उसके निर्वाह में ये जो गर्मी और सर्दी की वजह से जो कष्ट आ रहे हैं उसको हम सहन करते हैं। जब गर्मी होती है तो ऐसा नहीं कि हम अपने काम पे जाना बंद कर देते हैं, या जब सर्दी होती है तो जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं सुबह उठ करके स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि आज सर्दी आज स्नान नहीं करते, हालांकि वर्तमान समय में ऐसा हो गया है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में उठ करके सबसे पहले, जल्दी उठ करके सबसे पहले सभी स्नान करना जरूरी है, क्योंकि प्रातःकाल में सभी भगवान का नाम पूजा अर्चन करेंगे, करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई अभी बहुत सर्दी है आज स्नान नहीं करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य हैं उनके पालन में जो थोड़ा सुख दुख आता है उसको झेलते हुए हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, करना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहे हैं, हमारे जीवन में हमारे भाग्य के अनुसार जो सुख दुख आए उनको झेलते हुए हमें अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य करते जाना है। तो क्या है वो महत्वपूर्ण कर्तव्य, क्या है वो परम कर्तव्य, क्या है वो परम धर्म? तो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के सम्मुख सबके व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग प्रकार के धर्म और कर्तव्य हैं। स्त्री के लिए स्त्री धर्म है, समाज के सेवक हैं उनके लिए कुछ धर्म है, बच्चों के लिए अलग प्रकार के धर्म हैं, ऐसे सबके अलग अलग धर्म या कर्तव्य या कार्य हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें सूचना मिलती है हम सभी के लिए परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षज अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। हम सभी का एक परम धर्म है, क्या है? अधोक्षज, जो इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, जो इंद्रियों से अनुभव नहीं किया सकते, भगवान की भक्ति करना, यह हम सबका परम धर्म है। तो इससे क्या होगा? ययात्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा संपूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, वो आपका हमारा सबका परम धर्म है। इस शरीर का यापन करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो परम धर्म नहीं है, वो जरूरी है जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाला। आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक शरीर के लालन पालन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा की आवश्यकता नहीं है खाना पीना सोना, आत्मा की आवश्यकता क्या है? क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है? हम पूरा जीवन इस शरीर की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए बहुत अथक प्रयास करते रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, वो ठीक है, वो सही है, शरीर के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं मुख्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चार आवश्यकताएं हैं। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है इस शरीर के उपस्थित जो हम हैं, हमारी आत्मा यानी हम यानी आत्मा, की आवश्यकता क्या है, क्या ये रोटी उसकी आवश्यकता है, क्या ये सोना उसकी आवश्यकता है, क्या है आत्मा की आवश्यकता। तो इस श्लोक में भगवान आत्मा की आवश्यकता बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति करना आत्मा की खुराक है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का काव्य। क्यों? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं क्योंकि आप मैं हम सभी जितनी भी आत्मा है वो सब भगवान के अंश हैं, भगवान के हम नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम सभी भगवान के दास हैं, भगवान हम सब पालन करता है। शास्त्रों में कहा गया है नित्य नित्य नाम चेतनश चेतना नाम एको बहुनाम योग विदधाति कामा, ये उपनिषदों का वचन है। इसके अनुसार भगवान एक नित्य हैं, हम अनेक नित्य हैं, नित्य हम भी हैं भगवान भी हैं, लेकिन भगवान एक है और हम अनेक हैं। नित्य नित्य नाम चेतनश चेतना नाम, हम भी चेतन हैं, हम भी जीवित हैं और भगवान भी एक पुरुष हैं, चेतन व्यक्ति हैं, लेकिन हम में और भगवान में अंतर क्या है? एको बहुनाम, वो एक है हम अनेक है, योग विदधाति कामान, वो एक भगवान हम सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हम सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस एक भगवान पर निर्भर हैं। तो भगवान है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं और हम उन पर निर्भर हैं, ये अंतर है हम में और भगवान में। तो क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, वो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, वो हमारे नियंत्रण करता है, वो हमारे आदि उद्गम हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में अहम आदि, मैं सबका आदि हूं, अहम बीज प्रद पिता, सभी योनियों का मैं पिता हूं, केवल मनुष्य के नहीं, 84 लाख योनियों के सबके पिता भगवान श्री कृष्ण है। तो क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, इसलिए हमारा आत्मा का उन भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, सेवा करना। तो हमारा सबका भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या संबंध है? भक्तिमय सेवा, ये हमारा स्वाभाविक कार्य है, ये हमारा भगवान के साथ स्वाभाविक संबंध है। तो जीवन का परम कर्तव्य महान धर्म ये है, और इस भौतिक जीवन में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना ये गौण आवश्यक है। तो भौतिक जगत में रहते हुए जो हमें कष्ट आते हैं उनके निवारण में हमें इतना अधिक व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए, उनके प्रति इतना अधिक चिंतित नहीं हो जाना चाहिए कि जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, मुख्य कार्य है, उसे करना छोड़ दें। इस विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवतम में, आप सभी ने सुना होगा महारानी कुंती का नाम। महारानी कुंती कौन थी? पांडवों की माता थी। तो अगर आप पांडवों के जीवन को देखें, प्रारंभ से लेकर के ही, विशेष रूप से कुंती महारानी का जीवन, प्रारंभ से ही उन्हें अनेक अनेक कष्ट भुगतने पड़े। उनके जो पति थे उनका देहांत हो गया जब 5 पांडव बहुत छोटे थे, और जो 5 पांडव छोटे थे तो धृतराष्ट्र के संरक्षण में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि था, उसे दुर्योधन के प्रति लगाव था, इसलिए हमेशा वो चाहता था कि दुर्योधन राजा बने, ये पांडव राजा युधिष्ठिर राजा ना बने, और इसलिए दुर्योधन के कहने पर और उसकी खुद की बुद्धि से हमेशा वो प्रयास करता था पांडवों को अनेक अनेक प्रकार के कष्ट देने का। फिर महाभारत की कहानी में हम जानते हैं तो क्या हुआ, फिर पांडवों को वनवास दिया गया, द्युत क्रीड़ा में छल करके उनको हराया गया और उनको वनवास दिया गया। वनवास में कुंती महारानी भी साथ में गई, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, प्रारंभ में पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में और फिर पुत्र के संरक्षण में। इसलिए कुंती महारानी पांडवों के साथ वन में गई और वन में जाने के बाद क्या हुआ, दुर्योधन ने अनेक अनेक प्रति षडयंत्र के द्वारा पांडवों को मारना चाहा, लाक्षाग्रह में अग्नि के द्वारा उन सबको जलाने का प्रयास किया गया, उनको जहर देने का प्रयास किया गया, अनेक राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, ऐसे अनेक अनेक चीजें। और फिर तदुपरांत जब वनवास खत्म करके वो वापिस आए तो दुर्योधन ने उनको उनका राज्य देने के लिए मना कर दिया और 5 गांव मांगने पर भी मना कर दिया, लेकिन क्षत्रिय हैं तो उनको राज्य चाहिए, ये उनका कार्य है जिसके माध्यम से अपने जीवी को पाचन कर सकते थे। तो ऐसा नहीं होने पर फिर अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों के समक्ष बड़े बड़े महावीर उपस्थित थे। कौन कौन थे? भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे बहुत महा महा धुरंधर थे। और इस प्रकार से महाभारत युद्ध में बड़ी विषम परिस्थिति में होने के बाद में अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई। जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका जा रहे होते हैं तब कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, विपदा तंतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शन यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनो। तो महारानी कुंती को रोकती हैं कि अभी आप जा रहे हैं, जब पूरा जीवन हम अनेक विपदाओं से गुजर रहे थे तब आप हमेशा हमारे साथ रहते थे, कोई भी कष्ट होता था तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और उनकी रक्षा की। लाक्षाग्रह इत्यादि वनवास में भी जहां जहां पर पांडवों को कोई विपदा आई वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ आए। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में रहे। तो इस प्रकार से क्योंकि पांडव भगवान के भक्त थे इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए साथ रहे। और अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण उनको छोड़ के जाने लगे तो कुंती महारानी उस समय ये श्लोक कहती हैं कि अच्छा हो कि जितनी भी विपदाएं आई हैं ये बार बार आए, विपदा संतु तहा शाश्वता, बार बार ये विपदाएं आए वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब विपदाएं आएंगी बार बार तो हम बार बार आपको देखेंगे, आपका स्मरण करेंगे, और बार बार आपको देखना और आपको स्मरण करने से क्या होगा, हमें पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि विपदाएं बार बार आए। तो ये बड़ी विचित्र बात है, संसार में सब लोग प्रयास कर रहे हैं विपदा ना आए, है ना, पूरे जगत का यही प्रयास है कि कैसे हमारी विपदाएं नहीं हो, कैसे हमारी कष्ट कम हो, वो कष्ट क्षणिक कष्ट, किसी का पैसा नहीं है या किसी का शरीर में कुछ समस्या है, ऐसे कष्टों से हम इतने भी परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही संघर्ष जीवन का एकमात्र हेतु है। लेकिन कुंती महारानी तो बिल्कुल उल्टा कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि ये विपदाएं बार बार आए, क्योंकि यदि इन विपदाओं के आने से हम आपका स्मरण कर पाएंगे तो क्या होगा, हमें इस पुनर्जन्म में फिर नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना अलग दृष्टिकोण है जीवन को लेकर के। तो इसलिए हमें इस भौतिक जगत में, इस वर्तमान जीवन में जो भी भौतिक कष्ट प्राप्त हुए हैं, हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको उसके लिए प्रयास करना है, लेकिन समझना है कि हमारे भाग्य के अनुसार हमें कुछ सुख दुख मिलके हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, तो उसके लिए प्रयास करें। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य मात्र इन दुखों से संघर्ष करना या सुखों के लिए केवल प्रयासरत रहना ही नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक जो परम कष्ट हैं, उनसे निकलने के लिए तैयारी करना। तो कहीं अपने छोटे मोटे सुख दुख के में रत रह करके हम पूरा जीवन इनमें यदि बिता दें और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो उपाय है वो ना करें तो हमारा मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। इस मनुष्य जीवन में यदि हमने अपने सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए और बहुत सक्सेस भी हुए, सब कुछ जो हम चाहते थे हमने प्राप्त कर भी लिया, लेकिन यदि भगवत प्राप्ति नहीं की, यदि हमें फिर दूसरा जीवन पशु योनि मिली, तो क्या उससे कोई लाभ होगा? वर्तमान समय में हम बहुत सुखी हैं मान लीजिए, लेकिन अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ रहा है, तो क्या यह मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवत गीता में हमें मार्गदर्शन दिया गया है कि तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदा यम न लब्धते भ्रमताम उपरि यथा। इस मनुष्य जीवन में हमारा केंद्र होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए वो चीज प्राप्त करने के लिए जो ना तो ब्रह्मा को प्राप्त है ना तो शूद्र चीटी को प्राप्त है। क्या है वो चीज? तो इस श्लोक में हम जो हमने पढ़ा कहा, क्या कहा गया है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह पुनर्जन्म है, तो हमें उस चीज के लिए पकना चाहिए जो ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक कहीं उपलब्ध नहीं है, मनुष्य योनि में उपलब्ध है। मनुष्य योनि में उपलब्ध है यदि हम प्रयास करेंगे तो। क्या है वो उपलब्धि? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा सदा के लिए मुक्ति। ये एकमात्र लक्ष्य है हर मनुष्य का, चाहे उसकी भौतिक स्थिति कोई भी हो। भौतिक स्थिति के लिए सुधार के लिए हमें अत्यधिक उसके लिए चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए कि पूरा जीवन उसी के लिए व्यतीत कर दें, बल्कि हमें जीवन का केंद्र रखना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से ही निकल जाए तो फिर कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम इस भौतिक जगत के वर्तमान समय के कष्टों को निवारण में ही समय बिता दें तो ये तो क्षणिक है, कष्ट क्षणिक है, कष्ट चले जाएंगे लेकिन फिर दोबारा से कोई जन्म होगा, कोई योनि में आना पड़ेगा और फिर दोबारा से नए प्रकार के कष्ट आएंगे, उनका क्या होगा? इसलिए इस जीवन में रहते हुए हमें हमेशा हमारे मुख्य कार्य को ध्यान रखना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप यहां से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में अपना बुकिंग कराते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, और आप ट्रेन में बैठते हैं। आप देखते हैं कि ट्रेन में एसी नहीं चल रहा है और सीट गंदी है, टूटी फूटी है मान लीजिए, और आप उससे बड़े परेशान हो जाते हैं, उसके लिए उपाय करने लगते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आपका वो जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है, डब्बा है, वो ही मान लीजिए ट्रेन से जुड़ा नहीं है, किसी कारणवश अलग हो गया है, लेकिन आप वो जो एसी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, उसी समस्याओं के लिए अत्यधिक व्यथित हैं कि आपकी जो वास्तविक हेतु है ट्रेन में बैठने का, दिल्ली पहुंचना, क्या आप वास्तव में चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान में ना दें तो क्या होगा? जो वास्तविक हेतु है वो रह जाएगा। तो प्रकार से इस मनुष्य जीवन में अनेक अनेक कार्य हम कर सकते हैं, अनेक अनेक समस्याएं सबके लिए हैं, लेकिन वो समस्याओं का समाधान करते हुए हम अपनी मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा। ये है भगवत गीता का संदेश। जो कोई स्थिति में आप हैं, सबसे प्रमुख कार्य है जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए प्रयासरत रहना। तो भगवत गीता का संदेश है कि हम भगवत गीता का ज्ञान लेकर के अपने जीवन में उसका अनुशीलन करके सदा सदा के लिए इस देह को त्यागने के बाद उस धाम में जा सकते हैं जहां ना तो जन्म, ना तो मृत्यु, ना तो बुढ़ापा, ना तो बीमारी है। ये मात्र कल्पनाएं नहीं है। दुर्भाग्यवश आजकल के इस आधुनिक समाज में वैज्ञानिकीकरण हुआ है, लेकिन साथ साथ लोग नास्तिक भी बने हैं। आज ऐसा मानते हैं कि मानो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भगवान नहीं है, ये सब आकस्मिक है, अपने आप होता है, इस जीवन के बाद दोबारा जीवन नहीं है, ये भौतिक जगत ही सब कुछ है और भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वास्तव में ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। विज्ञान ने किसी भी तरीके से ये साबित नहीं किया है कि भगवान नहीं है, बल्कि ये कॉमन सेंस की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि भगवान है। जैसे हम देखें, हम बोल रहे हैं इस माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई कहे ये माइक्रोफोन क्या है, इसके अंदर कुछ लोहा है, कुछ प्लास्टिक है इसका बना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये माइक्रोफोन अपने आप बन गया और इसको बनाने वाला कोई नहीं और इसको बनाने के कोई हेतु नहीं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या संभव है ये माइक्रोफोन जो बड़ा सिंपल है ये अपने आप बन सकता है? इसको बनाने के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है जिसने कुछ हेतु को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है कि एम्पलीफाई आवाज को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। अब आप विचार कीजिए, ये सृष्टि इस माइक्रोफोन से कितनी अधिक जटिल है। हर दिन सूर्य अपने समय पर आता है और अपने समय पर जाता है। सूर्य का पृथ्वी का जो डिस्टेंस है हमेशा एक सा बना रहता है। यदि थोड़ा भी आगे पीछे भी सूर्य हो जाए अपनी कक्षा से, तो क्या होगा? हम लोग का जीवन समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक जगत की संरचना सृष्टि इतनी सुंदर तरीके से की गई है, तो कैसे संभव है कि ये सृष्टि बिना किसी बुद्धिमान व्यक्ति के, बिना किसी भगवान के अपने आप बनी हो? तो ये संभव नहीं। अतः इस भौतिक जगत के पीछे एक नियंत्रण करता है, भगवान है। और हम इन भगवान के सानिध्य में सदा सदा के लिए रह सकते हैं, वो संभव है। वो है वैकुंठ जगत, इसलिए इस जगत का नाम है वैकुंठ। क्या आप जानते हैं वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुंठा मतलब होता है चिंता, और वैकुंठ का अर्थ होता है जहां चिंताएं नहीं है। तो वो है हमारा घर, वो है हमारा वास्तविक स्थान, वैकुंठ जगत। वहीं से हम यहां पर आए हैं। जैसे एक व्यक्ति जेल में चले आता है, ऐसे ही वर्तमान में हम सभी यहां जेल में हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्थान वैकुंठ जगत, भगवत धाम है। हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन के बाद हम दोबारे इस भौतिक जगत में ना आए, बल्कि अपने घर लौटें, इस जेल से बाहर निकलें, अपने वास्तविक घर को जाएं, भगवत धाम को जाएं। ये है आपका हमारा वास्तविक लक्ष्य, और ये संभव है। ये शास्त्र के अनुसार, हमारे महान महान आचार्यों के अनुसार, उनके खुद जीवनों से उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर भगवत धाम गए हैं। तो ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, और यही आपके हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो अभी हम अपने इस सत्संग कार्यक्रम के इस अधिवेशन को यहां पर समाप्त करेंगे, क्योंकि एक और अधिवेशन है दोपहर के बाद 2:30 बजे से, जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हमने समझा कि भौतिक जगत में तो कष्ट रहने वाले ही हैं, कितना भी प्रयास कर लें अंततः मृत्यु आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्यय तो आएगी। तो क्यों ना हम ऐसे जगत को जाएं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जहां पर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही नहीं है, हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान के सानिध्य में आनंद से रह सकें। तो दोपहर के बाद के सत्र में हम चर्चा करेंगे, तो उपाय क्या है वहां जाने का, कैसे जा सकते हैं हम, क्या है उसका प्रोसेस, क्या सभी वो कर सकते हैं? ये हाँ, हम अभी इसके बाद प्रश्नोत्तर भी रखेंगे कुछ समय, 5 मिनट के लिए, उसमें आप प्रश्न भी पूछिएगा। तो ये हम आगामी सत्र में अभी देखेंगे कि कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ विराम देते हैं। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास एक और माइक है क्या? एक और माइक है, एक और माइक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका प्रश्न ये है कि उन्होंने सुना है कि वैकुंठ में जाने के बाद भी यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि वैकुंठ में कोई कर्म नहीं करने होते हैं, तो क्या उसकी ऊंची भी कोई स्थिति है? आप बैठिए। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो भगवान जो सृष्टि करता है वो स्वयं हमको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप मेरे धाम आएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता कोई नहीं है। यदि हम भगवत धाम जाएंगे तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि हमें नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वैकुंठ में हमें कर्म नहीं करना होता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वैकुंठ में जीवन में कुछ नहीं है। वैकुंठ का जीवन भगवान के साथ दिव्य लीलाओं के का जीवन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब इस पृथ्वी पर आए तो वही वैकुंठ का जीवन यहां पर उन्होंने हमको दिखाया कि ये है वैकुंठ का जीवन, वृंदावन जीवन, जहां सभी ब्रजवासी हमेशा भगवान की साथ दिव्य लीलाओं में परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो वहां क्रियाएं हैं लेकिन कर्म बंधी है। यहां क्रियाएं होती है लेकिन कर्म बंधन होता है। लेकिन भौतिक जगत में क्रियाएं हैं, वहां दिव्य स्वरूप है, हमारा दिव्य शरीर होता है, हम वहां पर निराकार नहीं हो जाते। भगवान का भी दिव्य स्वरूप है, वहां हम भगवान की अपनी दिव्य इंद्रियों से भगवान के दिव्य स्वरूप की सेवा करते हैं, लीला करते हैं, खेल करते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन उन क्रियाओं का कर्म बंधन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य होते हैं। इस भौतिक जगत में कर्म बंधन होता है क्योंकि यहाँ कार्य हम अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, इसलिए उसका कर्म बंधन होता है। लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य होता है उसका कोई कर्म बंधन नहीं होता है। अरे, और कोई प्रश्न? और किसी माता का कोई प्रश्न है? उसी को ही मोक्ष कहते हैं, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा अगर हम भगवत धाम चले गए तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, अर्थात वो मोक्ष है। वहां जाने का रास्ता हम दोपहर के बाद में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसमें समय लगेगा। तो अभी मध्याह्न का समय हो रहा है तो उसमें समय लगेगा। हाँ जी, हाँ 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 तो प्रश्न ये है कि प्राणायाम इत्यादि क्रिया से क्या आत्म साक्षात्कार संभव है, और आत्म साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता लगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो क्या है साक्षात्कार? आत्मा का साक्षात्कार, अपने को पहचानना, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हम अपने को कब पहचान सकते हैं? तो अगर रात्रि का समय हो, कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, और ये सब जो लाइट जलती है ये भी सूर्य से चलती है, अंततः ये सब शक्ति सूर्य से आती है। तो मान लीजिए रात्रि का समय है और कोई सूर्य का प्रकाश या किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, तो क्या हम अंधकार में अपने को देख पाते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन जब सूर्य उगता है सुबह को, तो सूर्य के प्रकाश में हम अपने को देख सकते हैं, अपने को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं और पूरे जगत को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा को हम कब अनुभूति कर सकते हैं कि हम आत्मा है? जब हम भगवान यानी परमात्मा को समझते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तब उनके दर्शन करने के दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान के प्रकाश में हम न केवल उनका दर्शन करते हैं बल्कि अपना भी दर्शन करते हैं, इस भौतिक जगत को वास्तविक रूप में तब समझते हैं। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने को समझना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इसकी अनुभूति करना, भगवान की अनुभूति करना, उनके साथ हमारा शाश्वत जो संबंध है वो पुनर्स्थापित होना, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार कैसे पता लगे? जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमें पता लगता है कि हमारी भूख मिट रही है? एक एक टुकड़ा जब हम मुंह में डालते हैं तो क्या हमें किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना पड़ता है कि क्या मेरी भूख मिट रही है? नहीं, जब हम खाना खाते हैं तो हमें स्वयं पता लगता है कि हमारी भूख मिट रही है। तो उसी प्रकार से शास्त्र में बताया गया है, जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, जब हम भगवान के साथ जैसे जैसे हमारा संबंध स्थापित होता है, तब स्वतः हमें अनुभूति होती है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है वो पुनर्स्थापित होता है, उसकी पुनर्स्मृति होती है, तब हमें स्वयं अनुभूति होती है इन सबकी। उसके लिए हमें किसी बाह्य सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। तो आत्म साक्षात्कार होने में हमें स्वयं हृदय के अंदर अनुभूति होती है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये संसार में कितना भी मैं सुख का प्रयास कर लूं वो व्यर्थ है, और मेरा वास्तविक सुख केवल भगवान को प्रसन्न करने में है, उनकी भक्ति सेवा में है। ये सब चीजें आपके हृदय में स्पष्ट रूप से स्थापित होती हैं, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और जो प्राणायाम, तो प्राणायाम जो है आत्म साक्षात्कार करने की एक विधि है अष्टांग योग, जिसमें 8 स्टेप्स के माध्यम से हम क्रमिक विकास करते हैं, जिसका प्रारंभ होता है यम, नियम, आसन इत्यादि से शुरू करके अंत में समाधि। तो ये जो प्राणायाम है वो उसी का एक अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्राणायाम उस विधि का एक अंग है, लेकिन प्राणायाम के आगे और अधिक जाना है। समाधि अर्थात परमात्मा जो हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में जो विष्णु रूप है, उनका सदैव मन के अंदर चिंतन करना, उसे समाधि कहते हैं, ध्यान धारण समाधि। तो अष्टांग योग विधि के का लक्ष्य है कि ध्यान विधि के माध्यम से हम सदैव अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर सकें। लेकिन वर्तमान समय में जो प्राणायाम इत्यादि की विधि सिखाई जाती है वो वास्तव में परमात्मा का दर्शन करने के लिए नहीं सिखाई जाती। उसका हेतु क्या होता है? शरीर को अच्छा रखना। लेकिन आत्म साक्षात्कार का हेतु नहीं है शरीर को अच्छा रखना। तो वो शरीर को अच्छा रखना आत्म साक्षात्कार में स्वाभाविक होता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे है वो सादा जीवन जीता है, सरल भोजन करता है, इंद्रिय अनावश्यक लिप्त नहीं होता है, और प्राणायाम इत्यादि तो स्वाभाविक करता है, इसलिए उसका शरीर हष्टपुष्ट रहता है। लेकिन वो उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य तो है भगवत प्राप्ति। तो प्राणायाम वास्तव में शास्त्र के अनुसार शरीर को हष्टपुष्ट रखने का माध्यम मात्र नहीं है। प्राणायाम का वास्तविक हेतु तो अष्टांग योग की विधि में आगे चल करके भगवत दर्शन, भगवान की प्राप्ति है, और शरीर अपने आप हष्टपुष्ट रहता है उसके माध्यम से। तो वर्तमान में जो प्रचलित योग आसन है, प्राणायाम है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका हेतु ही नहीं है वो, और वो तो केवल मात्र वहीं तक सीमित हो जाता है, उसके आगे की स्थिति में हमको ले ही नहीं जाता है। बल्कि हम अपने शरीर को हष्टपुष्ट रखते हैं प्राणायाम के माध्यम से, जिससे हम और अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त हो सके। हाँ, हमको बहुत चिंताएं हैं और बहुत शरीर बड़ा दुर्बल होता जा रहा है, तो थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा मन में शांति मिलेगा, जिससे हम और अधिक पैसा कमा सकें और अधिक इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध करा सकें। तो ये तो उल्टा हो गया। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमें धीरे धीरे इंद्रिय भोग के साधनों से दूर जाना है, भगवान में अपने को लगाना है। लेकिन वर्तमान समय प्रचलित जो योग साधना है, प्राणायाम है, वो तो हमारे शरीर को हष्टपुष्ट बनाने का साधन है, जिससे हम और अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त हो सकें और अच्छा इंद्रिय भोग कर सकें। तो वो वास्तव में अष्टांग योग नहीं है, वो केवल एक मेडिकल उपाय है। तो उसके लिए तो डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, लेकिन प्राणायाम का वास्तविक उद्देश्य ये होना चाहिए। परंतु अष्टांग योग की जो ये विधि आत्म साक्षात्कार की है, वो वर्तमान युग, वर्तमान समय के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह विधि अर्जुन को भगवद गीता में छठे अध्याय में बताई, ध्यान योग में। तो अर्जुन ये विधि को सुनकर के बोले कि भगवान, जिस विधि का उल्लेख आप मेरे लिए कर रहे हैं, वो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी प्रमद बलवद्धनम। ये जो मन है, ये तो बहुत बली है, इसको वश में रखना तो वायु रेव सुदुष्करम, वायु को वश में करने से भी अधिक दुष्कर है। अभी वायु को वश में करना कितना मुश्किल है, लेकिन अर्जुन कहते हैं मन को, आप जो विधि बता रहे हैं उस विधि से मन को वश में करना तो मेरे लिए वायु को वश में करने से भी अधिक मुश्किल लगता है। तो अर्जुन 5000 वर्ष पूर्व थे, वो महान योद्धा थे, वो कृष्ण के सखा थे, महान राजा थे, आत्मसंयमी थे। उनके लिए जब अष्टांग योग विधि मुश्किल थी, तो 5000 वर्ष पश्चात वर्तमान कलयुग में हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए, जिनकी जीवन की आयु घट करके मात्र 50-60 साल रह गई है, जिनको ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ता है, क्या हमारे लिए वो संभव होगा? तो संभव नहीं। लेकिन वर्तमान समय के लिए युग धर्म है, तो बताया गया है कृतियते ध्यायतो विष्णु तेतायाम यज्ञो मखई द्वापरे परिचर्यात्मकम कलौ तद हरि कीर्तनात्। आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग था, सतयुग में कुछ और था, त्रेतायुग में कुछ और, द्वापर में कुछ और कलयुग में अलग। युग के अनुसार आत्म साक्षात्कार का तरीका अलग अलग है। तो चार युग हैं, आपने सुने होंगे, कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो वर्तमान में कौन सा युग है? कलयुग। तो सतयुग के लिए जो आत्म साक्षात्कार की विधि अनुमोदित है, वो है अष्टांग योग, ध्यान योग। वो सतयुग के लिए है। सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु कितनी होती है? 1,00,000 साल। और वर्तमान में कितनी आयु है? मुश्किल से 100 साल, अधिक से अधिक 100 वर्ष। इसलिए सतयुग के लिए विधि है ध्यान विधि, जहां पर हजारों हजारों साल तक, जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज जंगल में हजारों हजारों साल तक इस अष्टांग योग विधि को सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। उसके बाद द्वापर त्रेता युग में जो विधि अनुमोदित है आत्म साक्षात्कार के लिए, वो है यज्ञ। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें यज्ञों में शुद्ध घी की आहुति दी जाती थी, कई कई टन शुद्ध घी की आहुति दी जाती थी। आजकल क्या आपको शुद्ध घी मिल पाएगा खाने के लिए भी? आजकल खाने के लिए शुद्ध घी गाय का नहीं मिल सकता है, उसमें भी चर्बी मिलाई जाती है। तो यज्ञ में डालने के लिए कहां है शुद्ध घी, कहां है अनाज? खाने के लिए अनाज नहीं है, तो यज्ञ में डालने के लिए कहां अनाज? तो वो विधि भी वर्तमान समय में नहीं संभव है। फिर द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा विग्रहों की स्थापना और उनकी पूजा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की विधि थी। तो हम देखते हैं जगन्नाथपुरी, ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण राजा कराया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो भी संभव नहीं है। वर्तमान कलयुग में शास्त्रों के अनुसार केवल एकमात्र उपाय है कलौ तद हरि कीर्तनाद, केवल हरि कीर्तन से ही केवल आत्म साक्षात्कार संभव है। इस विषय में हम और चर्चा करेंगे अपने दोपहर के बाद के सेशन में। तो यहां पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।